शांति। किसी व्यक्ति का बेटा बहुत बीमार था, सब प्रकार के इलाज करा लिए पर वो ठीक नहीं हो रहा था। और जब ऐसी अवस्था थी तो आखिरकार एक ज्योतिषी मिला और उसने कहा कि तुम्हारा बेटा ठीक हो सकता है, पर एक बहुत ही कठिन शर्त है। और वो शर्त ये है, स्वाति नक्षत्र हो, जंगल हो, और उस जंगल में मनुष्य की एक खोपड़ी पड़ी हो जिसमें जल हो आधा। वो जल पीने एक मेंढक वहां आ जाए और उसके पीछे एक सांप आ जाए और सांप के मुख से विष की बूंदें उस जल में गिर जाए। यदि वो जल तुम्हारे बेटे को पिलाया जाए तो शायद वो ठीक हो सकता है। शर्त बहुत असंभव सी थी। वो व्यक्ति तुरंत पंचांग खोलता है और पाता है कि आज ही स्वाति नक्षत्र है। घर से निकलता है, जंगल का रास्ता है, जाने लगता है। और जाते जाते सही में उसे एक खोपड़ी मिलती है जिसमें आधा पानी है। वो भगवान को धन्यवाद देता है कि इतनी शर्त तूने पूरी कर दी, अब आगे भी तू ही संभाल ले। और उतने में एक मेंढक पानी पीने वहां आता है, और जब वो पानी पी ही रहा होता है तो पीछे से एक सांप आ जाता है। मेंढक उछल के आगे कूद जाता है, सांप मुंह खोलता है, उसके मुख से विष की कुछ बूंदे उस जल में गिरती है और वो व्यक्ति उस पानी को ले जाता है और उसका बेटा ठीक होता है। सब कुछ असंभव सा था, परंतु जहां परमात्मा कृपा है, प्रभु की दया है, वहां सारे योग जुड़ गए और उसका बेटा बच गया। उसी तरह ब्राह्मणों का ये संगठन, उसी तरह ब्राह्मण परिवार की कोई भी बड्डी कहीं पर भी जब आयोजित होती है, अपने आप सारे योग जुड़ने लगते हैं। चाहे बट्टी करने वाले कराने वाले अपने आप पहुंच जाते हैं, बहुत सी बाधाएं, बहुत सी समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, व्यवहारिक समस्याएं, लौकिक समस्याएं, शारीरिक बीमारी, जब कोई बड़ा योग हो जीवन में तो अपने आप सब कुछ ठीक होने लगता है। और जैसे आज यहां पर हुआ है, सारे योग जुड़ गए और आप और हम सभी यहां पर एकत्र हो गए भट्टी करने के लिए। शायद किसी की बहुत मुश्किल थी, परंतु फिर भी पहुंच गए। तो जब ईश्वरीय कृपा होती है, अपने आप सबकी कृपा होने लगती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा सबकी होई। तो ऐसे लगता है सबको कि हम पर भगवान की कृपा हो गई ना, इसलिए तो पहुंच गए। असंभव कुछ नहीं ब्राह्मण संसार में या ब्राह्मणों के संकल्पों में। यदि संकल्प कर लिया जाए, और वो दृढ़ संकल्प है, तो चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, चाहे कितनी भी बाधाएं हो, सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। तो इस ब्राह्मण जीवन का मुख्य पुरुषार्थ है बाप समान संपन्न संपूर्ण समीप। आज सुबह की साकार मुरली में वरदान था, कमल समान बनना है और अमल करना है, इंप्लीमेंट, पालन करना, परिपालन करना। पवित्रता इस ब्राह्मण जीवन का जीवदान है, आधार है। प्यूरिटी इज ब्यूटी, प्यूरिटी इज रॉयल्टी, प्यूरिटी इज सिंप्लिसिटी, प्यूरिटी इज पब्लिसिटी। पवित्रता के विषय में बाबा ने ढेर सारी बातें बताई है। और यही हमारे जीवन का मुख्य आधार है। जितनी स्ट्रॉन्ग प्यूरिटी है उतनी स्ट्रॉन्ग स्थिति है। जहां प्यूरिटी में ही हलचल है वहां ब्राह्मण जीवन में हलचल है। इसलिए धीरे धीरे हर दिन पवित्रता में स्वयं को ऊपर 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 लेके जाना है। और पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता बहुत ऊंची मंजिल है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो पवित्रता है ये एक संजीवनी है। संजीवनी के दो अर्थ है, एक संजीवनी बूटी और एक संजीवनी मंत्र। संजीवनी बूटी अर्थात जो बेहोश है उसको जागृत कर दे। संजीवनी मंत्र का भी यही काम है, जो मर चुका है, जो बेहोश हो गया है, जो सो रहा है उसको जागृत कर दे। आज सुबह की साकार मुरली, कुंभकरण की गहरी नींद, अज्ञान निद्रा, बाप आए हैं तुम्हें जगाने, बच्चों जागो। किसी मुरली में पापा ने कहा है, एक एक कर्मेंद्रिया जाल है, जाल, मकड़ी का जाल, जो आत्मा को फंसा देती है। जैसे जाल मकड़ी छोटी होती पर विस्तार कितना बड़ा है, उसी तरह कर्मेंद्रिया छोटी है, कान आंख मुख, परंतु उसका विस्तार बहुत बड़ा है। और आत्मा इसी मकड़ी के जाल में फंस जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। इसे कहा जाता है रूहानी बेहोशी। तो पवित्रता वो संजीवनी है जो हमें इस रूहानी बेहोशी से बाहर निकालती है, जागृत करती है। तो आज की इस प्रथम क्लास में हम देखेंगे वो कौन कौन सी रूहानी बेहोशी है जिसमें आत्मा बेहोश हो गई है और केवल पवित्रता ही है जो इसको, इस आत्मा को इस बेहोशी से बाहर निकाले। तो इस ब्राह्मण जीवन में ऐसी कई प्रकार की बेहोशियां हैं। चलते चलते पुरुषार्थ करते करते अचानक आत्मा धीरे धीरे घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है, फिर पुरुषार्थ बंद हो जाता है, फिर मुरली क्लास में जाना बंद हो जाता है, एब्सेंटिज्म, और धीरे धीरे फिर ड्रॉप आउट। जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एब्सेंट रहते हैं, क्रॉनिक एब्सेंटिज्म अर्थात ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ जाती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो पवित्रता वो संजीवनी है, लाइफ गिविंग हर्ब, लाइफ इन्फ्यूजिंग हर्ब, जो कि आत्मा को जगा दे। तो यहां बैठे बैठे आज अपने आप को ही चेक करना है, स्व का निरीक्षण करना है। ब्राह्मणों की इतनी बड़ी सभा में शक्ति है, पावर है, एनर्जी है, ऊर्जा है, संगठन का बल है। इस सभा में यदि कोई संकल्प किया जाए तो वो सिद्ध होगा जरूर, क्योंकि इतनी सारी आत्माओं की प्यूरिटी के वाइब्रेशंस काम कर रहे हैं। तो किस बेहोशी में हम खो गए हैं और पवित्रता उन बेहोशी से कैसे हमको उभारती है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो लगभग ऐसी 14 प्रकार की बेहोशी है जिसमें आत्मा एक बार सो गई या बेहोश हो गई फिर उठती नहीं है और केवल पवित्रता की ही वो संजीवनी बूटी या मंत्र है जो उसे उठा सकता है। पवित्रता की प्रतिज्ञा, पवित्रता का संकल्प, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत, जिसमें दृष्टि वृत्ति जरा भी चलायमान ना हो, जिसमें आत्मिक दृष्टि हो, आत्मिक भाव हो, जिसमें पवित्र बोल हो, पवित्र संकल्प हो, पवित्र कर्म हो, पवित्र चलन हो, पवित्र संबंध हो, पवित्र संपर्क हो, पवित्र स्वप्न हो, पवित्र कल्पनाएं हो, पवित्र स्मृतियां हो, पवित्र यादें हो, पवित्र दृष्टि हो, पवित्र वृत्ति हो, पवित्र दृष्टिकोण हो, पवित्र आदतें हो, पवित्र बुद्धि हो, पवित्र संस्कार हो, पवित्र शरीर हो, पवित्र धन हो, पवित्र सुनना हो, पवित्र लिखना हो, पवित्र खाना हो, ऐसी संपूर्ण प्यूरिटी की स्टेज बहुत आनंददायी अवस्था है। दो तीन दिन पहले मुरली थी साकार, बेचैनी का कारण है अपवित्रता। यदि मन बेचैन है और मन में अशांति है और मन में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख है, कारण केवल एक है, इंप्यूरिटी। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में आज की इस भट्टी का यह लक्ष्य रखना है कि यहीं बैठे बैठे जो जन्म जन्म के विकार है और जो विकारी संस्कार आत्मा में समा गए हैं, इस भट्टी की ज्वाला से भस्म कर देने। जैसे ये हॉल नहीं है, क्या समझना है हम कहां बैठे हैं? कहां बैठे हैं? ज्वाला भवन में बैठे हैं। आग लग रही है सबको? आग की लपटे गरम गरम लग रहा है कि नहीं? ऐसे विजुलाइज करो कि पूरे हॉल में पवित्रता की अग्नि है और मैं आत्मा इस ज्वाला भवन में, इस भट्टी में तपने के लिए बैठी हूं। और जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे एक एक पल, एक एक सेकंड आगे बढ़ेगा, एक एक विकार, एक एक पाप, एक एक विकर्म भस्म हो रहा है। इस भाव से बैठना है। मैं आत्मा ज्वाला भवन में बैठी हूं, और जो बेहोशी बताई उस एक एक बेहोशी से मैं जाग रही हूं, उठ रही हूं, क्योंकि इस हॉल में पवित्रता की लपट है, अंगारे है, अग्नि है, ज्वाला है। तो जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे, साथ साथ अनुभव करते जाना है कि वो चीज मुझसे हट रही है, बाहर जा रही है, निकल रही है, भस्म हो रही है। सबसे पहली बेहोशी है विकार की बेहोशी। पांच विकार आत्मा को क्या कर दिया है? इन्होंने बेहोश कर दिया है। अब भगवान प्यूरिटी की संजीवनी लेकर आए हैं, जैसे रामायण में दिखाया है, वो हनुमान संजीवनी लेकर आता है। लक्ष्मण जो मूर्छित है, जैसे ही उसे वो संजीवनी दी जाती है, संजीवनी के प्रभाव से लक्ष्मण जाग उठता है। वैसे शायद हम भी विकारों के सर्प ने आत्मा को लपेट लिया है। जैसे ही प्यूरिटी की संजीवनी टच होगी, अपने आप आत्मा जागेगी। तो मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ऐसा संकल्प करना है। एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे बिना आवाज के, और अनुभव करेंगे कि अव्यक्त बाप दादा सीधा मेरे सम्मुख खड़े हैं और बाबा से मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं संपूर्ण पवित्रता की। मौन में सभी बाबा के सामने प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा आज से मेरा ये जीवन मैं संपूर्ण पवित्रता में बिताऊंगा। स्वयं अव्यक्त बाप दादा सम्मुख है, बाबा के नैनों से पवित्रता की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही है। बाबा आज तक कई बार विकारों ने मुझे भरा दिया, पराजित कर दिया, परंतु अब नहीं, ब्राह्मणों की इस अलौकिक सभा में, इस इंद्र सभा में आज मैं आत्मा प्रतिज्ञा करती हूं मनसा वाचा कर्मणा हर स्थान में हर समय और हर परिस्थिति में संपूर्ण पवित्रता का पालन करूंगी। आंखें बंद करेंगे और इस प्रतिज्ञा को मन ही मन 3 बार दोहराएंगे। आज से मैं मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता का संपूर्ण पालन करूंगा करूंगी। धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। तो अपने आप को जगाना है, अपने आप को उठाना है। विकार ने जो बेहोश कर दिया है उसे जागृत करना है। और जागरण की विधि है समझ, जागरण की विधि है ज्ञान, जागरण की विधि है अपने आप को हिलाना, शॉक। यदि कोई व्यक्ति भोजन खा रहा है और भोजन बहुत स्वादिष्ट बना हुआ है, अभी चालू नहीं किया है, थाली लाकर रखी हुई है, अब बस खाने ही वाला है, पर उसके कान में कोई आके कह दे कि इसमें विष मिला है, तो खाएगा क्या? नहीं। भोजन अभी भी सामने है, अभी भी सुगंध आ रही है, अब भी स्वादिष्ट है, उसके मनपसंद व्यंजन बने हुए हैं, परंतु फिर भी जैसे ही ये पता चलता है कि ये विष है, छोड़ देता है उसको। उसी तरह ये 5 विकार ऊपर से बहुत आकर्षित करते हैं, ऊपर से बहुत सुगंधित दिखाई देते हैं। कुछ दिनों पहले मुरली में था, संसार के लोग तो काम विकार को जैसे पूंजी समझते हैं, अपनी प्रॉपर्टी। पर जब आत्मा ये रियलाइज कर ले गहराई से कि ये विष है, अपने आप छोड़ देगी उसको। तो सबसे पहले तो इन विकारों से स्वयं को मुक्त करना है, जगाना है। इनकी भी एक बेहोशी है, इनकी भी एक निद्रा है। व्यक्ति जो उसमें डूबा हुआ है उसको पता ही नहीं चलता ये भी विकार है। सुबह का वरदान था, प्रेम भी मोह बन जाता है। दूसरा विकर्म, दूसरे नंबर की बेहोशी है विकर्म। आज तक इस ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए जो पाप है उनका बोझ ज्यादा है, द्वापर से जो पाप किए उनका बोझ कम है। और एक दूसरी बात अपनी डायरी में नोट करके रखनी है सबको, अपराध से भी बड़ा पाप, अपराध से भी बड़ा अपराध, अपराध को छिपाना है। अपराध तो कर लिया, अब उससे भी बड़ा अपराध है उसको छिपा के रखना। ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए विकर्म, जब कुछ सब कुछ पता था ये श्रीमत है, ये मनमत है, ये परमत है, अज्ञान काल में एक का एक गुना, ज्ञान काल में एक का 100 गुना, पाप भी और पुण्य भी। इसके लिए रोज मुरलियों में आता है, बाप को सच सच सुना दो, बाप के सामने स्वीकार कर लो ये हुआ है, नहीं तो गिल्ट कॉन्शियसनेस निरंतर रहेगी, साफ नहीं रहेगा दिल, हमेशा ये भाव कि मुझसे पाप हुआ है, अपराध हुआ है। समर्पित कर दो स्वयं को बाबा के आगे कि जो हुआ सो हुआ, खुद ही स्वयं को दंड दो, खुद ही पाए प्रायश्चित करो। और दंड कैसे देंगे, भोजन छोड़ देना ये दंड नहीं है, ज्ञान और योग का दंड देना है अपने आप को। अगर ब्राह्मण जीवन में हमें ऐसा लगता है कि हमसे कोई पाप हुआ है तो अब दंड दो, 7 दिन का दंड। क्या है 7 दिन का दंड? एक एक दिन कम से कम 3 बार मुरली पढ़ेंगे, एक एक दिन बैठ के कम से कम 4 घंटा योग करेंगे, ये है दंड। 4 घंटा बैठ कर योग, एक विदेशी महिला ने अपने एक ब्लॉग आर्टिकल में लिखा है, ये वो महिला है जो धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, पर उसने एक अंदाज लगाया, उसने लगा यदि कोई एक व्यक्ति अपने घर में ही बंद हो जाए 3 हफ्ते के लिए, विदाउट मोबाइल, विदाउट इंटरनेट, विदाउट लैपटॉप, विदाउट टीवी, 3 हफ्ता, और एवरी डे 14 to 16 hours बैठकर मेडिटेशन करे। और मेडिटेशन कौन सा? श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, बस। तो जब वो बाहर निकलेगा वो कुछ और होगा, वो व्यक्ति नहीं रहेगा जो पहले गया था। कितनी उसको अनुभूतियां हो जाएगी, किसकी कितनी बातें उसको पता चल जाएगी जो कि अब उसे पता नहीं चल पाती, क्योंकि माया जाल है। उस मौन में किसी से बात ना करे, एकांत में, किसी के संपर्क में नहीं। ये एक ऐसी महिला ने लिखा है ये, कि जो आध्यात्मिक नहीं है, जो धार्मिक नहीं है, जिसे अध्यात्म की कोई खबर नहीं है, उसने अंदाज लगाया है, इफ समबडी डज दिस ही विल कम आउट एज एन एनलाइटेंड पर्सन। तो आत्मा पर विकर्म का बोझ है, पश्चाताप प्रायश्चित, आत्मदंड। अपने आप को मुक्त करना है गिल्ट कॉन्शियसनेस से, पश्चाताप से। अपने आप को ही दंड देना है। कौन सा दंड? ज्ञान का दंड, योग का दंड, मौन का दंड, एकांत का दंड, अंतर्मुक्ता का दंड। तीसरा, भय, फियर। भय भी एक बेहोशी है। हर व्यक्ति भयभीत है अंदर से, और इस संसार का सबसे बड़ा भय कौन सा है? कौन सा भय है? मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। और संसार में सबसे बड़ा भय कौन सा है? एक तो मृत्यु, दूसरा बीमारी, और कहा जाता है इस संसार का सबसे बड़ा भय फियर ऑफ द अननोन, अज्ञात का भय। डर है आगे क्या होगा, जो अज्ञात है पता नहीं उसका भय है, मेरा क्या होगा। ये भय भी बेहोश करके रखता है आत्मा को, और पवित्रता इस भय से मुक्त करेगी। प्योर संकल्प पवित्र स्वमान आत्मा को भय से मुक्त करेगी, नहीं तो निरंतर एक भय पकड़ा हुआ है। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का, पति का, घर का, डिपार्टमेंट का, लोगों का, परिवार वालों का, लौकिक संबंधियों का क्या होगा। जैसे जैसे आत्मा प्योर प्योर बनती जाएगी, ये सारे भय नीचे छूटते जाएंगे, फिर निर्भय अवस्था में जाएगी इस शरीर से बाहर। एक लिस्ट बनानी है हर एक को, मेरे छिपे हुए भय कौन कौन से हैं, किस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। भय छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा। इंग्लिश में अननोन फियर्स को फोबिया कहा जाता है। किसी को बड़े हॉल का भय होता है, किसी को लोकल ट्रेन का भय लगता है, किसी को क्लोज स्पेसेस, किसी को हाइट्स का भय होता है, किसी को पानी का भय होता है। बचपन से पानी से डर लगता है, क्योंकि भय का संबंध सबकॉन्शियस माइंड से है, और सबकॉन्शियस माइंड में संस्कार है। हो सकता है किसी की मृत्यु पानी में डूब कर हुई है, अगले जन्म में बचपन से पानी से भय लगता है, तो भय बहुत गहरे है, और कई बार हमको भी नहीं पता चलता हमारे कौन से भय है, इतने सूक्ष्म है। विदेश में एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक दो अपराधी दोनों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। एक जो था एक सेल में था, उसको मारा गया बहुत खतरनाक तरीके से, एक बहुत जहरीला कोबरा उसके सेल में डाल दिया गया, और जैसे ही काटा मुंह से झाग निकला और वो तुरंत मर गया। और ये दृश्य जो बाजू वाला प्रिजनर था, अपराधी कैदी, उसको दिखाया गया और उसको कहा गया कल तुमको भी ऐसा ही मारेंगे। वो रात भर परेशान भयभीत कि मुझे उसी सांप से मरना है कल। इतना खतरनाक सांप जस डसा और एक सेकंड में वो व्यक्ति मर गया, मैं भी ऐसे ही मरने वाला हूं, रात भर परेशान भयभीत। दूसरे दिन उसकी बारी आई, फिर से वो सांप छोड़ा गया और वो एकदम इधर मुंह करके इतना भयभीत पसीना पसीना हो गया, और जैसे सांप ने काटा वो मर गया। पर सांप ने उसको काटा ही नहीं, केवल दिखाया गया था बस, और दो निशान कर दिए गए पेन से, क्योंकि वो इतना भयभीत था, उधर देख भी नहीं रहा था। उस भय ने ही उसको मार दिया। सांप तो केवल दिखाया गया, अंदर गया ही नहीं। भय व्यक्ति को मार देता है, अपने ही भय को ढूंढना है कौन से है, और पवित्रता के समान संकल्पों का अभ्यास करना है, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां पर भय नहीं। तो तीसरी बेहोशी है भय, चौथी चिंता वरी। व्यक्ति चिंता करते रहता है, चिंता करते रहता है, चिंता करते रहता है, और ऐसा कहा जाता है कि 40% जो चिंता है वो इमेजिनरी है। जो है ही नहीं पर जिसकी करता व्यक्ति, 30% चिंता जो है जो भविष्य की है, जो अभी हुआ ही नहीं है, बारह % चिंता लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, और शायद वो गलत कहते हैं, उसकी चिंता। 10% चिंता शरीर की बीमारी की है, जो कि चिंता करने से नहीं जाने वाली, और केवल 8% चिंता ही ऐसी है वरी, जो वास्तविक चिंता का विषय है, परंतु वो भी चिंता करने से नहीं जाएगी। दिस इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ वरी। व्यक्ति चिंता करते रहता है। बाबा ने हमको कहा है तुम्हें चिंता नहीं, तुम्हें चिंतन करना है। क्या करना है? चिंतन। किसका चिंतन करेंगे? मुरली का। इस सभा में ऐसे कितने बैठे हैं जो रोज मुरली का चिंतन करते? हाथ खड़ा करेंगे? रोज की मुरली का, सुनना नहीं, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, चिंतन बहुत कम। मनन, चिंतन, गहराई में जाना एक एक पॉइंट के। लास्ट संडे मुरली थी, एक है वो आत्माएं जिन्होंने ज्ञान को पॉइंट के रूप में धारण किया है, और दूसरी आत्मा है वो है जिन्होंने ज्ञान को शक्ति के रूप में धारण किया, अनुभव के रूप में धारण किया है, इसीलिए बच्चे नंबरवार है। नहीं तो यहां पर एक पढ़ाई है, एक पढ़ाने वाला है, एक क्लास है, एक क्लासरूम है, एक कोर्स है, एक मुरली है, एक स्टडी है, एक टाइम है, फिर भी सब नंबरवार क्यों? क्योंकि क्या अंतर है? किसी ने पॉइंट के रूप में धारण किया, किसी ने शक्ति के रूप में, और शक्ति के रूप में धारण करने के लिए क्या चाहिए? चिंतन। तो चिंता से स्वयं को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? चिंतन। तो आपको काम दे रहे एक, रोज मुरली कौन कौन सुनता है? डेली रेगुलर। कुछ कुछ है जो नहीं सुनते या कभी कभी सुनते हैं। चाहे सुने या पढ़े, एक काम करना है, रोज की मुरली से 5 topics निकालने हैं डेली। क्या करेंगे? मुरली से क्या करेंगे? 5 topics। टॉपिक्स लिख के रखना और फिर उसके ऊपर सारे दिन भर चिंतन करना। कब करेंगे चिंतन? जब टाइम मिले तब। वेट कर रहे हैं किसी के लिए, किसी का इंतजार कर रहे हैं, खाली टाइम मिल गया 15 मिनट, आधा घंटा, चुरा चुरा कर समय को, चुरा चुरा कर बीच बीच में चिंतन करना है। टॉपिक सुबह ही निर्धारित कर देना, मुरली सुनते समय या पढ़ते समय ही अलग से नोट करके रखो कि ये टॉपिक्स है, 5 टॉपिक्स। अगर 5 नहीं होते तो 3 टॉपिक्स मिनिमम हर दिन की मुरली से। जैसे आज की मुरली स्लोगन क्या था, क्या था? न्यारा प्यारा स्लोगन पूछ रहे, वरदान नहीं, किसकी छत्र छाया में रहो? स्नेह की छत्र छाया टॉपिक, परमात्म स्नेह की छत्र छाया लिख के रख देना है सुबह, और फिर सारे दिन पर उसके ऊपर सोचना कैसी है ये छाया, इस छाया के अंदर रहने से क्या क्या होता है, छाया से बाहर जाने से क्या क्या नुकसान होते हैं, टॉपिक्स। तो रोज की मुरली से 3 या तो 5 टॉपिक्स सुबह सुबह पढ़ते समय, लिखते समय, सुनते समय लिख के रख देना अलग से, और फिर सारे दिन भर सोचना है उसके बारे में, ताकि चिंतन चले। और चिंतन अगर करते रहेंगे तो अपने आप चिंता समाप्त होगी, नहीं तो सारे दिन भर चिंता ही चिंता, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऑफिस में क्या होगा, बॉस का क्या होगा, साथियों का क्या होगा, जूनियर्स का क्या होगा, ट्रैवलिंग की चिंता, पैसों की चिंता, मन को डाइवर्ट कर देना है, टॉपिक दे देना है उसको, तो उसमें बिजी रहेगा बीच बीच में, और चिंतन से आत्मा शक्तिशाली बनेगी। ज्ञान से शक्तिशाली नहीं बनती, ज्ञान के चिंतन से। तो पहला बताया विकार, दूसरा बताया विकर्म जो हो चुके हैं, तीसरा बताया भय, और चौथा बताया चिंता, पांचवा व्यर्थ। व्यर्थ भी एक बेहोशी है, व्यर्थ भी एक निद्रा है, और जो व्यर्थ में है उसे खुद ही नहीं पता रहता है कि मैं व्यर्थ में हूं। व्यर्थ संबंध बना के रखे हैं। आज की मुरली में है तुम्हारा केवल एक ही संबंध है, कौन सा? भाई भाई का। बाकी सारे संबंध का क्या करो, क्या करो? कैंसल, क्रॉस। वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक चिन्ह होता है क्रॉस, ऊपर लिखा रहता है डेंजर, देखा है? वैसे डेंजर लगा देना, कौन से रंग से? लाल रंग से। और भी खतरनाक बनाना है तो खून से लिख दो, डेंजर, क्रॉस, और ऊपर लिख देना डेंजर। केवल एक ही संबंध है जो सुरक्षित है, भाई भाई का। ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, डेंजर। क्या लिख देना? डेंजर। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, इसको वैसा ही करना चाहिए जैसे मैं इसको बोलूंगा, और जो नहीं करता है तो दुखी। एक लेखक है खलील गिब्रान, उसने लिखा है एक कविता में, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू। तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुम्हारे बच्चे नहीं है, वो तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है। यही तो माया है, ये हमारे है और हमारे लिए रहे, मेरे लिए सब कुछ करे, और जब नहीं करते हैं तो दुखी होते हैं। बाबा ने कहा सभी के लिए एक ही संबंध है, बस भाई भाई, दैट्स इट। बाकी सारे संबंध डेंजर, क्रॉस, कैंसल कर दो। व्यर्थ, वेस्ट रिलेशनशिप्स, जब पता चल गया वेस्ट है, अपने आप को फ्री कर दो उससे. डोंट स्टॉप. कब तक उसको खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे. जब पता चल गया ये वेस्ट है, स्टॉप. टीवी पर सीरियल कौन कौन देखता है, जरा हाथ खड़ा करें. ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, ये इंद्र सभा है. हाथ खड़ा करने के भी मार्क्स तो मिल जाएंगे सच्चाई के. और जो देखते हैं और हाथ नहीं खड़ा कर रहे, वो मन में हाथ खड़ा करेंगे. अभी अच्छा, सिनेमा कौन कौन देखता है? बहुत है इधर. जहां पर भी टाइम वेस्ट हो रहा है, बेहोशी है. क्रॉस क्या कर देना है? क्रॉस. मूवीज खून से ऊपर लिख देना. क्या? डेंजर. टाइम वेस्ट. जो जो व्यर्थ है उसको समझ लेना कि ये व्यर्थ है, और उससे मुक्त कर देना अपने आप को. कैसे मुक्त करेंगे? संकल्प से. संकल्प ही विधि है और कुछ नहीं. उसके बाद में अगला है निगेटिव. अगली बेहोशी कौन सी है? निगेटिव. किसी आत्मा के प्रति इतना निगेटिव चल रहा है कि अब उसके गुण देखने बंद हो गए, केवल अवगुण ही दिखाई देते हैं. जब भी देखो वो जो कुछ करता है सब निगेटिव दिखता है. अर्थात वो हमसे अधिक शक्तिशाली है. उसने हमें इतना प्रभावित कर दिया है कि उसका निगेटिव हम में समा गया है. हम भी तो विकार के वश हो गए. वो गलत कर रहा है और हम निगेटिव सोच रहे हैं, दोनों सेम है. वो क्रोध कर रहा है, वो गलत कर रहा है, हम क्रोध कर रहे हैं, एक ही तो होगा. वो भी गलत कर रहा है, हम भी गलत कर रहे हैं. तो निगेटिव भी एक बेहोशी है. निगेटिविटी इट्सेल्फ एक स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस है. क्या करेंगे निगेटिविटी से मुक्त होने के लिए? उस आत्मा को माफ कर दो. क्या करेंगे निगेटिविटी से? उस आत्मा के बैठकर गुणों का चिंतन करो. कुछ तो होगा उसमें जो पॉजिटिव है, क्योंकि हमने इतना निगेटिव सोचा है उस आत्मा के लिए कि अब उसका पॉजिटिव दिखना बंद हो गया है. पर ये निगेटिविटी भी एक बेहोशी है. अब हमको इससे बाहर निकलना है तो एकांत में बैठकर उस आत्मा का चिंतन करना पड़ेगा. उसमें क्या क्या गुण है उसे माफ करना पड़ेगा, स्वयं को माफ करना पड़ेगा. माफी मांगनी पड़ेगी या करनी पड़ेगी. और निगेटिविटी है, इसका अर्थ ज्ञान का चिंतन कम है, मुरली का चिंतन कम है. क्योंकि मुरली पॉजिटिव थॉट्स का खजाना है. मुरली इज द ट्रेजर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स. अगली बेहोशी पुराने संस्कार या हैबिट्स. और संस्कार बहुत डीप होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में समाये हुए, अवचेतन मन में. और वो कब बने हमें भी नहीं पता. पर एक विधि है संस्कार बनने की, रिपीटिशन. बार 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 इतनी बार किया है उसको कि अब वो संस्कार बन गया, हैबिट बन गई है. और हमें अगर उस आदत से मुक्त होना है तो एक न्यू हैबिट तैयार करनी पड़ेगी, हेल्दी हैबिट. जैसे शास्त्रों में दिखाया है ना, रामायण में, एक बाण इधर से वो मारता है, दूसरा बाण उधर से वो मारता है. एक संस्कार अगर इधर से आ रहा है तो हमें एक नया संस्कार तैयार करना पड़ेगा जो उसको काट दे. एक हैबिट को कैसे खत्म करेंगे? दूसरी हैबिट से. जैसे एक व्यक्ति है, जो बहुत दारू पीता है और दारू पीने के बाद उसको सांप ही सांप दिखाई देने लगते हैं। वो कहता है कि मुझे डर लगता है, इतने सारे सांप। लोग समझाते हैं ऐसे कोई सांप है ही नहीं, तुम्हें दिखता है, तुम्हारा भ्रम है। पर जिसको दिखता है वो थोड़ी ना मानता है, वो कहता है नहीं वो है, मुझे सांप ही सांप दिखाई देते, एक बार दारू पीता है तो सांप ही सांप दिखाई देते। लोग समझाते पर वो नहीं मानता है, वो कहता है। फिर वो खुद ही एक दिन एक उपाय ढूंढ लेता है, एक पिंजड़ा लेता है और पिंजड़ा लेके घूमता है। लोग कहते हैं ये पिंजड़ा किस लिए, क्या है इसमें? वो कहता है इस पिंजड़े में नेवला है। क्यों 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 नेवला रखा? क्योंकि सांप को खा जाता है नेवला। पर लोग कहते हैं वो सांप इमेजिनरी है, काल्पनिक है, सांप तो है ही नहीं, फिर तुम पिंजरे में नेवला क्यों रखते हो? वो कहता है ये नेवला भी काल्पनिक है। अगर वो काल्पनिक है, वो है ही नहीं, तो ये भी है। एक इमेजिनेशन को काउंटर करने के लिए नया इमेजिनेशन क्रिएट किया गया है। एक संस्कार है लंबे समय से चल रहा है, उदाहरण काम विकार, नहीं जा रहा है। अब नया संस्कार क्रिएट करना पड़ेगा, पवित्र आदतें, प्योर हैबिट्स। और स्थूल आदतें चाहिए कुछ, जैसे प्यूरिटी का लिटरेचर स्टडी करना, जैसे महान आत्माएं जो हुई है उनके जीवन का अध्ययन करना, तो प्रेरणा आएगी कि कैसे इन्होंने पवित्रता को धारण किया, हम भी ऐसी पवित्रता को धारण करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती सन्यासी थे, योगी थे, अविवाहित रहे, लिखते रहते थे। किसी ने उनको पूछा ये काम विकार तुमको परेशान नहीं करता? उन्होंने कहा है हां करता है, रोज ही आता है दरवाजे पर। वो पूछते हैं आऊं? मैं कहता हूं रुको, पहले मुझे लिखना है थोड़ा, बाद में आना। और मेरा काम तो कभी पूरा होता ही नहीं, वो बेचारा बाहर ही खड़े रहता है और थक कर चला जाता है। सभी विकारों की जननी जो है फुर्सत। कहां आता है विकार? जब खाली होते हैं तब आते। जो व्यक्ति बिजी है वो उसको टाइम ही नहीं है। एक शांतिवन में भाई है, वो बड़ी हंसी की बात कहते हैं। उनको पूछा कि तुमने शादी क्यों नहीं की? वो कहते हैं टाइम ही नहीं मिला। शादी क्यों नहीं की? टाइम ही नहीं मिला, इतना बिजी थे सेवा में, जब से ज्ञान में आए सेवा में लगे रहे। तो बाहर वाले पूछते हैं शादी क्यों नहीं की? वो टाइम ही नहीं मिला तो क्या करूं। तो बिजी कर देना है खुद को, खाली टाइम। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, शैतान का घर है। दिन भर सेवाएं की, दिन भर सब कुछ किया, रात को कमरे में आए तब माया आक्रमण करती है। दिन भर नहीं करेगी, दिन भर बिजी थे। जिस दिन जिस समय जिस स्थान पर खाली हुए, माया का आक्रमण वहां होता है। तो पुराने संस्कार, ऐसा कोई तो एक संस्कार होगा जो हमने सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं जा रहा है, उसको ढूंढना है वो कौन सा है। और प्लानिंग बनानी है, प्रोग्राम बनाना है एक, कि कैसे। जैसे एक संस्कार चोरी करने का, एक संस्कार छिपाने का, एक संस्कार ईर्ष्या का। कोई थोड़ा भी मुझसे आगे जाता है तो ईर्ष्या होती है, सूक्ष्म संस्कार है। चोरी, चोरी कैसे? किसी की वस्तु बिना पूछे उठाना, किसी का मोबाइल चेक करना, किसी की बैग देखना, किसी का सामान बिना पूछे खा लेना, बहुत रूप है उसके अलग अलग। उसके बाद में अगली पॉइंट, पुरानी दर्दनाक यादें। बेहोशी है। हर एक के जीवन में ढेर सारी बातें हुई है, जो पुरानी यादें हैं उसमें अपवित्रता कहीं ना कहीं समाई हुई है। अब उनसे मुक्त होना है तो प्योरिटी की संजीवनी की आवश्यकता है, प्योरिटी के समान प्योर लिटरेचर स्टडी करना है। हमारा देखना प्योर हो, सुनना पवित्र हो, और जो भी इम्प्योर है डेंजर ऊपर लिख देना है कि ना, बाबा ने मना किया है। एक चित्र आपको बता रहे हैं, इधर लिखना क्रॉस, ऊपर लिखना खून से डेंजर, और नीचे लिखना बाबा ने मना किया है, बाबा ने मना किया है। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, गॉड हैज फॉरबिडन इट, भगवान ने मना किया है। तो पुरानी यादें न्यूट्रलाइज करते जाना है उसको, पास्ट मेमोरीज को। और द बेस्ट मेथड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज बॉडीलेस स्टेज। आत्मा परम धाम में जब स्थित है, अशरीरी है, तो ऑटोमेटिक ब्रेन में जो मेमोरीज के पाथवेज है, न्यूरल पाथवेज, वो सारे डिलीट होते जाएंगे। आत्मा अशरीरी अवस्था में रहे, ऊपर से शक्ति आ रही है, उसमें भर रही है, और रिकॉर्ड का जो पुराना है सब कुछ डिलीट होते जा रहा है। इसके लिए भरते जाना है नया, जैसे इंक की एक बॉटल है, इंक की बॉटल, इंक खत्म हो गई है, अब बॉटल में नीली नीली शाही है, कैसे निकालते हैं उसको, पानी के नल के नीचे रखते हैं, नल चालू, इंक की बॉटल नीचे, पानी उसमें जाते जाता है, जाते जाता है, जाते जाता है, भरते जाता है, पहले पहले नीला नीला पानी आएगा, जब नीला पानी आएगा तो घबराना नहीं है, ये क्या हो रहा है, उल्टा हो गया, ये तो हम तो गए थे साफ करने और ये तो उल्टा हो गया, छोड़ो छोड़ो, बंद करो, बंद नहीं करना है, क्या करना है, पानी को चालू रखना है, चालू रखो, चालू रखो, चालू रखो, चालू रखो, एक समय आएगा क्या होगा, स्वच्छ पानी निकलेगा। उसी तरह मन में जन्म जन्म के विकार समाये हुए हैं, जैसे ही प्यूरिटी उसमें डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, पहले पहले और खराब विकार, विकारी ख्यालात आएंगे, परंतु धीरे धीरे वो भी स्वच्छ हो जाएंगे। उसके बाद में अगली पॉइंट, परिस्थितियां, परिस्थितियां बेहोश कर देती है, विपरीत परिस्थितियां, डिफिकल्ट सिचुएशंस। बाबा ने कहा है परिस्थितियों को जीतने की विधि क्या है, स्वस्थिति, स्वस्थिति से परिस्थिति को जीतना है। परिस्थिति आ गई और हम क्या करते हैं, परिस्थिति का चिंतन करते हैं, हमारा चिंतन सब परिस्थिति को जाता है, परिस्थिति और पावरफुल बनती है। जैसे कोई जॉब कर रहा है, उसको जॉब से निकाल दिया गया, फायर्ड, वो सोचता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और ही दुखी होते जाता है। परिस्थिति आई है, जैसे हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और उसने एक दिन अचानक शरीर छोड़ दिया, परिस्थिति है, सोचते रहता है, सोचते रहता है, सोचते रहता है, सोचते रहता है, दुखी होते रहता है। स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, और जितने पवित्र संकल्प होंगे स्थिति अपने आप पावरफुल होती जाएगी। अगला है दूसरी आत्माएं, उनके द्वारा आने वाली प्रॉब्लम्स हमें सुला देती है, और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हमें दो चीजें करती है, दूसरों के बोल और व्यवहार। हमने बहुत अच्छा कोई काम किया, कोई आया और उसने टॉन्ट कर दिया, दुखी। हमने बहुत अच्छी सेवा की और किसी ने आकर हमको कमेंट कर दिया, कुछ ऐसी बात बोल दी जो एकदम टच हर्ट हो गई, दुखी। या किसी ने उचित व्यवहार नहीं किया, दुखी। ये दो चीजें दुखी कर देती है। तो आत्माएं भी एक कारण है, संकल्प रखना है चाहे संसार की आत्माएं या लोग कुछ भी कहे, हमें अचल अडोल रहना है। और अचल अडोल रहने के लिए सूक्ष्म शक्ति पवित्रता की ही चाहिए। जब पवित्रता ही हिल रही है तो व्यक्ति अचल अडोल नहीं रह सकता, रिएक्ट करेगा, झगड़ा करेगा, संघर्ष करेगा उनसे। और जब प्यूरिटी में स्थित है तो कितना भी लोग दोषी ठहराए, आरोप लगाए, झूठे आरोप, रिस्पॉन्स विल बी साइलेंस। और वर्तमान समय सबसे ज्यादा युद्ध कहां पर हो रहा है? पहले युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर होता था, अभी ऑनलाइन युद्ध है, सोशल मीडिया के कुरुक्षेत्र में युद्ध होता है, ऑनलाइन अब्यूजेस। वो इधर से कुछ बोलता है, इधर से कोई ट्वीट करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लड़ाई चालू है। द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्स टू ऑनलाइन अब्यूज इज साइलेंस, मौन। पर ये पावर तभी आएगी जब अंदर प्यूरिटी है, नहीं तो नहीं आएगी। हर व्यक्ति रिएक्ट करना चाहता है, उसने हमको ऐसा कहा, हम देखते हैं उसको लड़ाई। आत्माओं के द्वारा विघ्न, आत्माओं के द्वारा आई हुई बेहोशी। उसके बाद में अगली पॉइंट, पांच तत्व। अचानक बारिश, अचानक ठंड, अचानक भूकंप, अचानक समय आएगा कि घर से बाहर नहीं जा सकेंगे। मुरलियों में आया है कई बार, मौत का बाजार गर्म होगा, होलसेल मौत होगा, चारों तरफ कर्फ्यू लगेगा, घर से बाहर नहीं निकल सकोगे, मुरलियां भी नहीं मिलेगी, जो ज्ञान सुना है बस उसी को याद करना पड़ेगा। ऐसा समय आएगा तब क्या करोगे? और आ रहा है। कुछ ना कुछ कारण बनेंगे, कुछ भी कारण बनेंगे, पर समय आएगा। पांच तत्व के द्वारा भयंकर हलचल होगी। एक तत्व यदि हलचल करता है तो क्या हाल हो जाता है? बाढ़ आ गई, कितनी हलचल हो जाती है। सोचो पांचों तत्व एक साथ हलचल करे, एक तरफ भूकंप भी, ऊपर से बिजली भी गिर रही है, एक तरफ से बाढ़ आ रही है, एक तरफ से ज्वालामुखी फट रहा है, पांचों तत्व एक साथ। एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा था, एक समय आएगा कि पांच खिलाड़ी माया के और पांच खिलाड़ी प्रकृति के एक साथ अटैक करेंगे। तो पांच तत्व की जो बेहोशी है उसमें भी जो प्योर सोल्स है वो सुरक्षित रहेंगे। उनको कुछ नहीं होगा। उसके बाद है उदासी, डिप्रेशन। उदास हो जाती है आत्मा। जब उदास होती है तो बेहोश हो जाती है एकदम से, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ना अमृत वेला उठना अच्छा लगता है, ना मुरली सुनना अच्छा लगता है, ना सेवा करना अच्छा लगता है, ना कोई किताब पढ़ना अच्छा लगता है, ना किसी की क्लास सुनना अच्छा लगता है, ना भट्टी अच्छी लगती है, ना ब्राह्मण परिवार, ना सेंटर, ना मधुबन। सबसे वैराग, उल्टा वैराग। आज कहा ना बाबा ने, माया क्या करती है, रावण खुद तो भटकता है और दूसरों को भी भटकाता है। ज्ञान मुक्त, योग मुक्त अवस्था। कौन सी अवस्था? ज्ञान मुक्त और योग मुक्त और माया युक्त। ऐसी अवस्था में पहुंच जाते, कुछ अच्छा नहीं लगता, और करते भी हैं तो फिर जबरदस्ती दुखी हो होकर। एक भाई था, शांति स्तंभ पर योग कर रहा था, तो इतनी नींद भयंकर कि पूरा नीचे झुक गया नीचे। उसको कहा क्या कर रहे हो, वो कह रहा था सकाश धरती को। क्या कर रहा हूं, सकाश दे रहा हूं धरती को। फिर बहाने ढूंढने पड़ते, फिर अमृत वेला कोई इधर गिरता है कोई इधर गिरता है, भयंकर नींद। तो ये भी एक माया है, ये भी एक बेहोशी है। इस बेहोशी से खुद को उभारना है पवित्रता से। उसके बाद में अगला इविल सोल्स, भटकती आत्माएं, जो आत्मा अतृप्त होकर शरीर छोड़ती है वो भटकती रहती है, और वो उन आत्माओं में प्रवेश करती है जो कमजोर है, उन आत्माओं में अधिक प्रवेश करती है जिनमें प्यूरिटी की पावर कम है, और जिनमें काम विकार का आकर्षण बहुत ज्यादा है। जिनका सुख शरीर में है ऐसी आत्माओं में ये भटकती हुई आत्माएं प्रवेश करती है, और जिनका ब्रह्मचर्य बहुत स्ट्रांग है ऐसी आत्माएं उन तक आ भी नहीं सकती। इसके लिए बाबा ने तो कह दिया बस एक ही मंत्र है, शिव मंत्र, और कुछ नहीं। इसके सामने सब फेल है। और लास्ट है 14th, तंत्र मंत्र। एक बताया इविल स्पिरिट्स, और दूसरा है तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, और कुछ कुछ करते हैं लोग, दूसरों का अहित करने की जिसमें इच्छा होती है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा पाप है। जिसमें भावनाएं अशुभ है, अकल्याणकारी है, इसका खराब हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए, और ये भी होगा। ऐसी आत्माएं इर्द गिर्द है जो ये सोचती है, पर जो प्यूरिटी में स्थित है उनका इन सब बातों से कोई प्रभावित नहीं होगा, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सारी चीजों का आधार पवित्रता है। सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि मुझ में कहां कहां पवित्रता है। यदि कोई संबंध ऐसा बना के रखा है जिसमें पवित्रता की संभावना है, पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्यूरिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ लस्ट, क्या करना है, कैंसल, डेंजर। तो ऐसी ये 14 बातें हैं जो बेहोश कर देती है, और इनसे यदि निकलना है तो एक ही संजीवनी है, एक ही लाइफ गिविंग हर्ब, वो है प्यूरिटी। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहला बताया विकार, बार बार मन में संकल्प लाना है मुझे संपूर्ण निर्विकारी बनना है, अंश भी ना हो विकार का, जरा सा भी छोड़ के रखा थोड़ा सा तो वंश बन जाएगा। दूसरा विकर्म, आज तक किए हुए सारे पाप भस्म करने समय बहुत कम है, और बाबा ने तो यहां तक कहा है, जब तुम किसी को शरीर देखते हो तो पाप करते हो, तो कितने पाप हो गए एक दिन के। और ज्ञान में पाप का हिसाब क्या है, एक का 100, इतनी सूक्ष्म परिभाषा दी है। तीसरा भय, लिस्ट बनानी है, मुझे किन किन बातों से डर लगता है, मृत्यु से, स्व की या स्वजनों की, अपनों के बिछड़ने की का भय तो नहीं है। और बहुत सारे हमारे भय काल्पनिक हैं, जैसे एक महिला थी, उसको रोज रात में एक स्वप्न दिखता था कि एक राक्षस उसका पीछा कर रहा है, काला काला राक्षस बहुत बड़ा, वो भाग रही है, वो राक्षस पीछे पीछे आ रहा है, परछाई एक, और जब भी उठती थी धड़कन बड़ी हुई, धड़ 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 धड़, पर वो कभी देखा नहीं उसने कौन पीछा कर रहा है, पर रोज एक ही स्वप्न दिखता था, एक कोई पीछा कर रहा है पीछे से। और एक दिन स्वप्न थोड़ा आगे बढ़ गया, वो पीछा कर रही है कर रही है कर रही है, और वो राक्षस पीछे से आ रहा है, और वो पीछे मुड़ के देखती है तो राक्षस उसके ऊपर आ जाता है, और आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं है, वो नीचे गिर जाती है। वो पूछती है उस राक्षस से, हु आर यू, तुम कौन हो? वो कहता है मुझे क्या पता, इट इज योर ड्रीम, ये तुम्हारा स्वप्न है। समझ में आया क्या है? वो पूछती है तुम कौन हो, वो कहता है मुझे क्या पता, तुम्हारा स्वप्न तुम्हारा है, अर्थात काल्पनिक भय। भय के बाद क्या बताया, चिंता, फोर्थ चिंता। चिंता को कैसे मिटाएंगे, चिंतन से। उसके लिए काम दिया सबको रोज की मुरली से 5 टॉपिक्स निकालने, और निकाल के दूसरों को नहीं दे देना चिंतन करने के लिए कि ये तुम करो, खुद करना है, नहीं तो कहेंगे ये तुम्हारे लिए मैंने टॉपिक निकाले। आज की मुरली ना तुम्हारे लिए खास, लोग कहते ना ऐसा, फोन करके बताते आज की मुरली में बाबा ने तुमको याद किया है। मुझे? हाँ, तुम अमृत वेला उठते नहीं है ना, तुम्हारे लिए खास पॉइंट है। पांचवा, पुराने संस्कार, हैबिट्स, एडिक्शंस, आदतें, लत, इतना जल्दी नहीं जाती है। लोग 6-6 महीना रिहैब सेंटर में रहते हैं, पुनर्वसन केंद्र में, दारू छोड़ने के लिए, बीड़ी छोड़ने के लिए, निकलने के बाद फिर से चालू करते थे। बहुत मुश्किल काम है, पर दृढ़ संकल्प से सब कुछ संभव होगा। एक नेपाल का भाई है जो अभी सेवा केंद्र पर रहता है, सेंटर पर, बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। उसने अपना अनुभव सुनाया था कि वो एक जमाने में ड्रग एडिक्ट था, चरस, गांजा, अफीम पूरे उसके जेब में भरे रहते थे, इधर हाथ में टैटू, इधर टैटू, वो बाइक और उसके वो गुंडे दोस्त रोज निकलते थे बाइक पर। रात को सोने का समय था उसका 4 या 5 बजे सुबह के, रात भर जागते थे, और बहुत अमीर, और इतना चरस, इतना गांजा, दुकानों से तो लेते ही थे, पर जो जंगलों में साधु महाराज रहते उनके पास से भी गांजा लेते थे, न्यू न्यू। इतना भयंकर एडिक्ट था वो, इतना भयंकर एडिक्शन। पर कैसे, वो ब्रह्मा कुमारी बहन एक दिन उसके घर पर आई, उसकी माँ पहले ज्ञान में आई थोड़ी, और वो रात भर फिर कैसे परिवर्तन हुआ उसका अनुभव है, आप सुन सकते हैं। रात भर रोता रहा, और एकदम बाबा की ऐसी टचिंग हुई उसको कि दूसरे दिन उसने सोचा कि आज से मैं इस गांजा को हाथ ही नहीं लगाऊंगा। दोनों उसके जेब जींस के चरस गांजा से भरे हुए, और उसने भर के रखा और कहा कि उसको कहा उस चरस को कि मैं तुमको हाथ नहीं लगाऊंगा, और पूरा दिन वैसा बीत गया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं उसके साथ। और जो छोड़ा उसने तो हमेशा के लिए छोड़ दिया, अभी तो समर्पित रूप से सेवा केंद्र पर सेवा करता है, बहुत अच्छी सेवा। ऐसा भी हुआ है। असंभव संभव। नहीं तो संसार में 6-6 मास रुकते हैं पर फिर भी छूटती कहां है दारू, नहीं छूटती है, बहुत मुश्किल है छूटना। पर परमात्मा पवित्रता में शक्तियों में बहुत पावर है। तो पुराने संस्कार, उसके बाद में पुरानी दर्दनाक यादें, पास्ट ट्रॉमेटिक मेमोरीज, उसके प्रभाव से अपने आप को बाहर निकालना है। उसके बाद क्या बताया, क्या वेस्ट और अगला निगेटिव, ये दो भी बहुत बड़े बड़े शत्रु है हमारे। खाली उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये वेस्ट है और ये निगेटिव चल रहा है। वो बस पता चल जाए ये है। उसके बाद में आत्माएं या उसके बाद अगला परिस्थितियां, परिस्थितियां हमको प्रभावित ना करे, कर रही है अर्थात प्यूरिटी कम है। आत्माएं हमको प्रभावित कर रही है क्योंकि प्यूरिटी कम है। उसके बाद में 5 तत्व, 5 तत्व का हम पर कोई प्रभाव ना हो, 5 तत्व अपनी तरफ, पुरुषार्थ अपनी तरफ। उसके बाद में बताया उदासी, डिप्रेशन। उसके बाद में बताया इविल स्पिरिट्स, ये उन आत्माओं में प्रवेश करती है, उस शरीर में प्रवेश करती है जहां आत्मा को शरीर में बहुत रस है। जिन आत्माओं का रस संकल्पों में है और शरीर के ऊपर है, उनमें दूसरी आत्माएं नहीं प्रवेश करती। बाबा ने मूल कभी कहा है, ऐसा भी समय आएगा एक एक शरीर में 20-20 आत्माएं प्रवेश करेगी, विनाश के समय हजारों लाखों आत्मा एक साथ शरीर छोड़ेगी। क्या करेगी आत्मा, कहां जाएगी, दर्द, पुकार, चीख, और लास्ट तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रियाएं, ये भी बेहोशी कर दे। कई लोग हमारे पास आते हैं ओपीडी में, हम पूछते क्या तकलीफ है, वो कहते किसी ने कुछ कर दिया है, मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। और जो स्वीकार करता है उसके साथ होने भी लगता है सब कुछ, जिसने रिजेक्ट कर दिया उसको कुछ नहीं होता है, होता उसको है जो स्वीकार कर लेता है। अगर उसको रिजेक्ट कर दिया कुछ नहीं होगा फिर। तो ऐसी ये 14 बातें हैं जो हमें बेहोश कर देती है और पवित्रता की संजीवनी हमें फिर से होश में लाती है। अच्छा, ओम शांति।
पवित्रता के राह पर, पवित्रता के राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता के राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है।
पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर मन में हो शुद्धता,
दृष्टि निर्विकारी हो, मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो, सबको पावन करना यही भावना हो, सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश, सबको यही सुनाना है, पवित्रता के राह पर हमको चलते जाना है,
पवित्रता के राह पर हमको चलते जाना है।
जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है, जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है,
पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना।